बहुत गंभीरता इस बात पर विचार करें, अगर किसी को आज्ञाकारी पुत्र मिल गया, मधुर भाषिणी सेवा परायण पत्नी मिल गई और अच्छे अच्छे संबंधी मिल गए, तो उनके मिलने से आप बताइए आपको क्या मिला? केवल यही मिला कि आप निरंतर उन्हीं के चिंतन में आबद्ध हो जाएंगे। आप अपने जीवन में कर देख लीजिए, जो आपके काम आता है उसके चिंतन में आप आबद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, यहां जो लोग आए हैं और जिनके साथ चंद्रकांत भाई ने अच्छा व्यवहार किया है, उनके मन में क्या बात उठेगी? ये हमारे यहां आए, हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अनुभव करके देखें, जो आपके साथ भलाई करता है वही आप पर अधिकार करता है। यानी आप विवश होते हैं उसके अधीन होने के लिए, किंतु यदि आप के जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए तो आप ही बताइए, प्रेमी कभी पराधीन रहता है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी भिन्नता आती है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी गैरियत आती है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी निराशा आती है क्या? तो वो प्रेम तभी आपको प्राप्त होगा कि जब आप की हुई सेवा के द्वारा अपने को स्वाधीन बनाए, शांत बनाए, निर्विकार बनाए। अगर आप शांत नहीं है, स्वाधीन नहीं है, निर्विकार नहीं है, तो प्रेम का प्रादुर्भाव संभव ही नहीं है। आप सोचते होंगे कि किसी श्रम साध्य साधन से प्रेम की प्राप्ति होती है? श्रम करने से करने में आसक्ति होती है। करने की आसक्ति का नाम प्रेम नहीं है। करने की आसक्ति शरीर से तादात्म्य जोड़ देती है, शरीर में आबद्ध कर देती है। शरीर का न रहना आपके लिए असह्य दुख बन जाता है, और ये आप जानते ही हैं कि शरीर रहेगा ही नहीं। तो करने से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति तो एकमात्र त्याग से होती है, सेवा से होती है, आत्मीयता से होती है। और सेवा, त्याग तथा आत्मीयता में आप सदैव स्वाधीन हैं। आप सभी को अपना मान सकते हैं, प्रभु को अपना मान सकते हैं। आप निर्मम और निष्काम हो सकते हैं, मिली हुई वस्तु को समर्पित कर सकते हैं। आप विचार करके देखें, जिसके करने में आप सदैव स्वाधीन हैं और जिसके करने से करने का अंत होता है, ये बड़े रहस्य की बात है। जो करना करने में ही बदलता रहे वो करना निरर्थक, और जिस करने का अंत हो जाए। अच्छा भाई, त्याग एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? क्या विचार है आपका? एक बार। तो त्याग करने से करने का अंत हुआ कि नहीं? अच्छा, जो कुछ प्राप्त है उसका समर्पण एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? तो सेवा से करने का अंत हो गया ना। ऐसे ही जिसमें आपने आत्मीयता स्वीकार की, जिसको आपने अपना स्वीकार किया, ये एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? इससे क्या सिद्ध हुआ कि करना वही सार्थक है जिससे करने का अंत हो। अच्छा भाई, सुख की आशा को लेकर की हुई प्रवृत्ति कभी नाश होती है क्या कि नवीन प्रवृत्ति को जन्म देती है? आप विचार करके देखें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसका कभी अंत ही न हो, करना करने में ही बदलता रहे, ये तो दशा आप देखते हैं सहज सभी को सदैव प्राप्त है। बोलते हैं, बोलने का राग रखते हुए पुनः फिर बोलते हैं, सुनते हैं, सुनने का राग रहने से पुनः फिर सुनते हैं,
जो कुछ आप करते हैं करने का राग रहने से पुनः करते हैं, तो जो करना करने में ही बदलता रहता है वो करना कर्तव्य नहीं है। जो करना सदा के लिए समाप्त होता है और उसके परिणाम में, करने के परिणाम में आपको परम शांति, स्वाधीनता और प्रेम की प्राप्ति होती है, तो सदैव रहने वाली चीज शांति, स्वाधीनता और प्रेम है कि कोई श्रम साध्य साधन है? आपको मानना पड़ेगा शांति, स्वाधीनता और प्रेम ही आपका जीवन है, इसी से आपकी एकता है। और इसको मानव सेवा संघ की भाषा में साधन तत्व बताया और मानव को साधक बताया। साधन तत्व का अर्थ है जिसमें समस्त साधन विलीन हो जाए, यानी भिन्न भिन्न साधन जब एक में विलीन हो जाते हैं उसको कहते हैं साधन तत्व। तो समस्त साधन किसमें विलीन होते हैं? तो मानना पड़ता है प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम की जागृति में। तो प्रेम हुआ साधन तत्व, और वो किसे प्राप्त हुआ? साधक को। आप हैं साधक, कैसे प्राप्त हुआ? तो मानना पड़ता है कि सेवा से, त्याग से, आत्मीयता से। यदि आप सेवा, त्याग और आत्मीयता को अपना लेते हैं तो आपको साधन तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। वही साधन तत्व आप जानते हैं क्या है? राधा तत्व है, सीता तत्व है, गौरी तत्व है, गुरु तत्व है। ये साधन तत्व के ही रूप हैं। वर्ण में भेद है किंतु वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। आप सोचिए, किसी से पूछो कि राधा क्या है, बोले कृष्ण की अनन्य प्रियता। श्री कृष्ण जिनको अत्यंत प्यारे हैं, अथवा यों को श्री कृष्ण का प्रेम ही मूर्ति मान राधा है। और बताइए राधा क्या है? ये अर्थ सीता में लगेगा, ये अर्थ गौरी में लगेगा, ये अर्थ आप जानते हैं गुरु तत्व में भी लगेगा। जैसे संत मत में गुरु की महिमा गाई जाती है, गुरु के प्राप्त करने की बात कही जाती है, यानी गुरु तत्व से अभिन्नता होती है। और वो गुरु तत्व क्या है? साध्य की अगाध प्रियता। साध्य की प्रियता ही तो सिद्धि है। तो हमारा साध्य हमें प्यारा लगे तो आप क्या हुए? आप प्रेम हुए कि साध्य हुए? क्या विचार है? प्रेम हुए। तो प्रेम की आपको प्राप्ति होगी या किसी अन्य की प्राप्ति होगी? इसका अर्थ न लगा लीजिए कि साध्य और प्रेम एक वस्तु है, ऐसा भी लोगों ने कह दिया, पर बात ऐसी नहीं है। वो प्रेम साध्य का ही स्वभाव है, ये बात तो आप कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि प्रेम दूरी, भेद और भिन्नता का नाशक है। जब दूरी नहीं रही तो योग प्राप्त हो गया, जब भेद नहीं रहा तो बोध प्राप्त हो गया, और जब भिन्नता नहीं रही तो अगाध प्रियता प्राप्त हो गई। तो अगाध प्रियता कहो अथवा बोध कहो अथवा योग कहो, ये प्रेम की विभूति हुई ना, यानी प्रेम का ही रूपांतर हुआ ना। आप कहें कि फिर योग बोध और प्रेम जब एक ही है तो उसको प्रेम ही क्यों न कहा जाए? ये तो आपकी अपनी रुचि की बात है। चाहे प्रेम कहो, चाहे योग कहो, चाहे बोध कहो। आप विचार कीजिए, योग में दूरी रहती है क्या? भेद रहता है क्या? भिन्नता रहती है क्या? आप लोगों ने बहुत सोने प्रयाग में त्रिवेणी स्नान किया होगा। प्रयाग में जब गंगा यमुना का योग होता है तो आगे चल के नाम गंगा का और रूप यमुना का आप देख ले जाते भेद रहा क्या? अब योग और बोध में कोई अंतर हो गया क्या? किंतु आप ये भी देखेंगे कि योग होने पर भी गंगा यमुना से, यमुना गंगा से मिलने के लिए सदैव आकुल है, गतिशील है, इसी का नाम प्रेम है। बोध में, योग में भी प्रेम है और प्रेम में योग और बोध है, इसी का नाम सिद्धि है, इसी का नाम सफलता है। जब तक आपको ये मालूम हो कि योग अलग चीज है, बोध अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, तब तक मानना पड़ेगा कि वो साधन रूप योग है, साधन रूप बोध और प्रेम है। किंतु जिस समय साध रूप योग बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है तब इनमें विभाजन नहीं हो सकता। किंतु फिर भी रस में एक भेद है, योग का रस, बोध का रस, प्रेम का रस। योग का रस शांत रस है, बोध का रस शांत के साथ साथ अखंड है और प्रेम का रस अखंड के साथ साथ अनंत है। जैसे आप देखिए ना, जहां संगम होता है वहां कोई, देखिए किसी तरह का भेद नहीं है, जल जल है दोनों। देखिए जाति एकता भी, स्वरूप की एकता भी है, फिर भी नित्यनम गति है कि नहीं, इसी चीज को दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। चीज कोई अलग नहीं है, चीज एक ही है। किसी ने कह दिया हमें तो वास्तविकता का बोध हो गया, हम कृतकृत हो गए। उनसे पूछा जाए उस बोध में तुम्हारी प्रियता है कि नहीं, तो कहना पड़ेगा है। क्यों? यदि बोध में प्रियता न हो तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। आनंद की अभिव्यक्ति में मूल हेतु प्रियता है। किसी ने कह दिया हमें प्रेमास्पद की प्राप्ति हो गई, तो बोला बताओ सही, जिस प्रेमास्पद की आपको प्राप्ति हुई उसका आपको बोध है कि नहीं, तो मानना पड़ेगा हे। तो प्रियता में बोध, बोध में प्रियता, मिलन में बोध, मिलन में प्रियता। किंतु प्रियता एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि इसकी कभी पूर्ति नहीं होती, और पूर्ति न होने से ही अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है। और नित्यनव रस की अभिव्यक्ति है, ये प्रियता का सहज स्वभाव है। देखिए आपकी प्रियता किसमें है ये प्रश्न ही नहीं है, चाहे किसमें हो, किंतु प्रियता का मूल्य समान ही है। आप विचार करें, आप किसी से कहें कि हम आपको प्रेम करते हैं किंतु हमारे पास जो कुछ है वो तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो क्या कहेगा? कोई प्रेम करते हो तो धोखा देते हो। तात्पर्य क्या निकला कि जिसके आप प्रेमी हैं उसको अपना सब कुछ देना पड़ता है, और किसी से आप कहें हम आपको प्रेम तो करते हैं पर हमें हमारी ये बात पूरी कर दो, तो वो क्या कहेगा कि प्रेम करते हो कि मेरा भोग करते हो? प्रेम में काम नहीं है, प्रेम में अपने पास अपना करके कुछ नहीं है। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है, उसी को न प्रेम की प्राप्ति होती है। अब आप बताइए कि प्रेम का मूल्य क्या हुआ? यानी ये जो आप सोचते हैं कि हमारा प्रेमास्पद सुंदर होगा तब हम प्रेम करेंगे, तो इसके भीतर क्या धुनी निकलती है? इसके भीतर ये धुनी निकलती है कि आप प्रेम के बहाने प्रेमास्पद का भोग करना चाहते हैं। तभी ना आप देखते हैं कि वो कैसे हैं, जरा विचार तो कीजिए। तो ये जो लोगों में भ्रम है कि प्रभु कैसे हैं, काम के हैं कि बेकाम के हैं, तब हम उनसे प्रेम करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने सुख के लिए कुछ आशा रखते हैं, तब सोचते हैं कि कैसे हैं। यदि आप प्रेमी हैं तो कहां ये प्रश्न आता है कि वे कैसे हैं, और कहां ये प्रश्न आता है कि वे कहां हैं, और कहां ये प्रश्न आता है कि वो क्या करते हैं। चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, चाहे कुछ करें, अपने हैं और प्रिय हैं। यह है प्रेम की दीक्षा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम देखेंगे कि अच्छे लगते हैं कि नहीं, तो ये बात तो भोगी के जीवन की है, प्रेमी के जीवन की बात नहीं है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रेमी प्रेमास्पद सुंदर नहीं है? भाई इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सुंदर नहीं है। क्यों? प्रेमी को तो प्रेमास्पद में नित्यनव सुंदरता का भास ही होता रहता है, नित्यनव सुंदरता का भास होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इसलिए प्रेमी है कि वो सुंदर है, इसका अर्थ यह है कि वो प्रेमी है इसलिए प्रेमास्पद सुंदर है। यह बड़ा एक रहस्य रहता है। ये जो प्रेमास्पद के वर्णन में प्रेमियों ने बड़ी बड़ी महिमाएं गाई, और साधारण प्राणी प्रेमी होने से पहले उस महिमा के कारण आकर्षित हुए। और अगर कल्पना करो कि कहीं सुने हुए के अनुसार महिमा न निकली तो आप प्रेमी रहेंगे? आप प्रेमी नहीं रह सकते। मेरा निवेदन यह था कि प्रेमी होने के लिए इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप ये जाने कि हमारे प्रीतम कैसे हैं, इस बात की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अगर कैसे है ऐसा सोचकर आप प्रेमी होना चाहते हैं तो प्रेमी नहीं हो सकते। क्यों प्रेमी क्यों नहीं हो सकते? कि ये बात तो आप तब सोचेंगे जब आपके प्रेमास्पद से कुछ लेना हो। जब हम किसी से लेना होता है तब सोचते हैं कि वो कैसे हैं, और जब तक आपको कुछ लेना है तब तक प्रेमियों की सूची में नाम लिखा जाएगा क्या है? जब तक आपको भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए है? जब तक आपको कुछ चाहिए तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्रेमियों की सूची में हमारा नाम लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। जिसे कुछ नहीं चाहिए एक बात, और जिसको अपने पास अपना करके कुछ नहीं रखना है दो बात, और मिलन में भी और वियोग में भी जिसके जीवन में नित्यनव प्रियता है। ये नहीं कि मिलन काल में तो प्रेम है और वियोग में प्रेम नहीं है, या वियोग काल में तो प्रेम है और मिलन में प्रेम नहीं है। प्रेमी के जीवन पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा कि प्रेमी के लिए मिलन और वियोग कुछ अर्थ ही नहीं रखता। क्यों? इस संबंध में किसी एक प्रेमिका की बात है। एक कोई प्रेमिका थी और उसका जो प्रेमास्पद था वो कहीं बाहर चला गया, उसके वियोग में वो मरणासन्न हो गई। उसकी एक चतुर सखी थी, उसने कहा कि अरे बहन, वे तो अब तक नहीं आए और तेरे जीवन की अंतिम घड़ियां आ गई।